श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री लाडिली लाल की, श्री बरसाना धाम की, नंदगांव धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबको हृदय से प्रणाम है, हरे कृष्णा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने बरसाना जाकर सेवा करने का इच्छा किया है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के धाम में जाना है, इतना सोचकर भी सारे पापों को नाश होता है। केवल विचार कर कि मैं जाना चाहता हूँ, जाऊँगा, उसकी योजना बनाना, उसकी तैयारी करना, उसके बारे में विचार करना, क्योंकि धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं धाम है और उसमें एक अंतर है भगवान में और धाम में, कि भगवान से अधिक धाम ज़्यादा कृपालु है। भगवान जितनी कृपा करते हैं उससे कई गुना अधिक कृपा भगवान के धाम करता है। और धाम एक व्यक्ति है, धाम जगह तो है ही, स्थान के रूप में वो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। नदी भी एक व्यक्ति है, देवी है, लेकिन जल के रूप में वो भगवान की सेवा करती है। कुंड सरोवर पर्वत ये भी व्यक्ति है, लेकिन कुंड सरोवर पर्वत के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। सब कुछ व्यक्ति है, एवरीथिंग इज अ पर्सन। तो इसलिए हम जब जा रहे हैं तो ये मत सोचना कि हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं या पिकनिक मनाने जा रहे हैं या थोड़ा मजा करने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद साथ में जाने का मौका मिल रहे हैं, सब व्यवस्था होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन मेरे विचार से बरसाना कैंप में जाना एक बड़ी गंभीर बात है, इट्स अ वेरी सीरियस एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा गंभीर एक्टिविटी। क्योंकि आमतौर पर जब हम धाम में जाते हैं, वृंदावन में या कहीं और जगह यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने का जो मूड होता है वो एक अलग मूड होता है, वो भी एक गंभीर मूड है। लेकिन उसमें हम लोग सेवा नहीं करते धामवासियों की, जाते हैं, दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, डोनेशन देते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन बरसाना जो कैंप है हमारा दांतों का और आँखों का, ये धाम की यात्रा तो है, लेकिन धाम से यात्रा भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें हमें धामवासियों की सेवा मिलती है। करीब करीब 9 करोड़ लोग साल भर में बरसाना में जाते हैं दर्शन करने के लिए। 9 करोड़ लोग साल भर में दर्शन करते हैं, उत्सव में जाते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन उसमें से मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर लोगों को वहाँ पर सेवा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर वहाँ पर रहते हैं वो तो अलग बात है उनकी। जो बाहर से 9 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं किसी न किसी बहाने, उसमें से केवल 1-2 हज़ार लोगों को वहाँ पर राधा रानी ने सेवा दिया है। आप लोग कितने लोग आने वाले हैं वहाँ पर? 500 लोग। तो मेरे 500 लोग तो आप ही हो, ये बड़े भाग्य की बात है। हाँ, हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हमारा भाग्य क्या है या हमारे ऊपर क्या बेनिफिट दिया जा रहा है या हमको क्या लाभ दिया जा रहा है या प्रिविलेज दिया जा रहा है, हमारा भाग्य क्या है, ये हम समझते नहीं है। तो इसलिए मरीजों की सेवा, धाम वासियों की सेवा करने का मौका मिलना, ये सबसे बड़ी देन है हमारे लिए। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ जो है वो एक है भक्तों का संग और दूसरी है भक्तों की सेवा। ये सबसे बड़ी भेंट है भगवान की मनुष्य जीवन, जीव को जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। और बरसाना कैंप ये उसका एक होल सेल प्रमाण प्रस्तुतिकरण है। इट्स अ होल सेल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्चून ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक साथ में इतने लोगों को एकत्र होकर, इतने हजार लोगों को आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत इंटेंस है ये, बहुत तीव्र एक्टिविटी है। तो इसलिए आपको अलग अलग रूप में भी ओरिएंट किया गया, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी है जो पहली बार जा रहे हैं, उनको पता नहीं बरसाना कैंप क्या होता है। कुछ लोग आप में से होंगे जो पहली बार जा रहे हैं, हाँ, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी इसके बारे में, इसलिए आप लोग को भी प्रेरणा होकर आप जाना चाहते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जितना आप सेवा में मग्न रहोगे उतना आपको कैंप का दिव्य आनंद मिलेगा। जितना आपके मन में कुछ अलग बातें रहेंगी, ठीक है मैं ये दर्शन करने जाऊंगा, ठीक है मैं ये करने जाऊंगा, ठीक है मैं वो करने जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, भगवान की सेवा के अलावा विचार आपके मन में आएंगे, अनेक विकल्प आएंगे, तो आपका कैंप का जो लाभ है वो अलग तरीके से होगा या नहीं होगा, या आपको कुछ बुरे अनुभव आएंगे, क्योंकि फिर भी क्योंकि मुख्य चीज़ यह है कि धाम व्यक्ति हैं। और जैसे मैं आपके घर पर आता हूँ तो मैं आपसे कैसे व्यवहार करता हूँ उस पर आपका भी मेरे ऊपर का व्यवहार निर्भर रहता है। शुरू में आपको ये अंदाज नहीं होता कि मैं कैसा व्यवहार करने वाला हूँ, तो आप मुझसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे क्योंकि आप मेरे होस्ट हो, यजमान हो। लेकिन कुछ समय बाद जब मेरा व्यवहार गलत होने लगेगा तो आप भी फिर धीरे धीरे बताने लगेंगे साहब ये नहीं चलेगा, या तो चले जाओ या तो कुछ कहेंगे आप मुझे। तो वैसे आप धाम में भगवान के मेहमान बनकर जा रहे हो, क्योंकि भगवान का धाम घर है ना, धाम भगवान का घर है, उनके घर में आप जा रहे हो और आपको भगवान पहले से अपने दिल से आपको स्वागत करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे, आपको प्रेम से स्वागत करके आलिंगन देंगे। लेकिन आपका व्यवहार अगर सही नहीं होगा, धाम की चेतना से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, धाम की चेतना से अनुकूल नहीं रहेगा, तो फिर धीरे धीरे आपको उसकी रिएक्शंस मिलने लगेंगे। बार बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि धाम एक व्यक्ति है और धाम अपना गौरव छुपाए रखता है जब व्यक्ति की चेतना सही नहीं रहती है। धाम में जाने वाले की व्यक्ति की चेतना अगर भोग की होती है या एंजॉयमेंट की होती है, लाभ खुद के लिए क्या मिलेगा ऐसी भावना होती है, तो धाम अपना गौरव छुपाए रखता है। और जब जाने वाले व्यक्ति की चेतना धाम के अनुकूल, धाम की सेवा के लिए, धाम के आदर में, धाम के लिए गौरव मन में होगा, उसके लिए आदर होगा और उस भावना से वो कृतज्ञ भावना से सेवा करेगा, तो धाम अपना पूरा गौरव उसके लिए प्रकट करता है। इसलिए 500 लोग जाएंगे फिर भी 500 लोगों को 500 तरीके से धाम अपने आप को प्रकट करेगा। और हमारी तो आपके लिए ये प्रार्थना है सबके लिए कि धाम आपके लिए सर्वोच्च पद्धति से अपने आप को प्रकट करे, अपना गौरव, आपके लिए आध्यात्मिक लाभ, आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, दिव्य आनंद, सेवा का आनंद, वो सब कुछ आपको धाम परिपूर्ण तरीके से दे, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन हमारी प्रार्थना केवल पर्याप्त नहीं है, आपका भी सहयोग जरूरी है उसमें। जब आपका सहयोग होगा तो धाम आपको सर्वोच्च आनंद देने में बहुत उत्सुक रहेगा। ये हमने संतों से सुना है कि धाम में जाकर जो गलत काम करते हैं, गलत भावना में रहते हैं, एक तो धाम उनकी उनके लिए गौरव छुपा देता है और उसका रिएक्शन भी देता है, परिणाम भी देता है उसका। और श्री वृंदावन धाम जो है उसमें जाकर अपराध करना, उसमें जाकर गलत काम करना, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। जैसे आप मुंबई में हो, अच्छे हो, यहाँ पर अगर गलत भावना होगी तो चल जाएगा अपना काम, लेकिन अगर आप तलवार की धार पे चलना चाहो, भागना चाहोगे, तो जगह जगह अपने आप को काटोगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। तो वृंदावन धाम, बरसाना धाम, नंदगांव धाम इस प्रकार का एक तीव्र धाम है। लगने में देहात लगेगा आपको, एकदम इतना लगेगा कुछ फैसिलिटी नहीं है, लोग भी अनपढ़ है, कुछ दिखने भी अच्छे नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, एकदम देहात है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे ब्रज धाम का एक बहुत ही उत्कट हिस्सा है, इसलिए भौतिक दृष्टि से बहुत वो अनडेवलप्ड रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअली वो सबसे मोस्ट एडवांस्ड लोकेशन है। क्योंकि उसकी खासियत यह है कि सारे ब्रज में और सारे दुनिया में सब लोग भगवान कृष्ण के चरणों की रज लेना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। लेकिन बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो कृष्ण स्वयं जाकर राधा रानी को पूजना चाहते हैं, राधा रानी को भजन करना चाहते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं। एक ही जगह है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे निर्माण में, जहाँ पर कृष्ण भगवान जो सबके लिए पूज्य हैं, सब उनके चरणों के रज के लिए लालायित रहते हैं, वो बरसाना में जाकर राधा रानी के चरणों के रज की याचना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके लिए सखी वेश धारण करते हैं, क्या नहीं करते वो। और केवल श्री कृष्ण नहीं, जितने भी देवता हैं सब लोग वहाँ पर केवल आते नहीं हैं लेकिन सखी बनकर आते हैं। शंकर भगवान, सब देवता पुरुष जो हैं वो भी स्वयं सखी बनकर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ पर उनको पुकारने आते हैं। तो इसलिए बरसाने को आप ठीक से समझना कि आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ पर भक्ति का रस बरसता है उस जगह को बरसाना कहते हैं, जहाँ भक्ति का रस निर्माण होता है, वहीं निर्माण होता है और वहीं से विकास होता है और वहीं से उसका प्रसार होता है। वहीं से भगवान को रस की प्राप्ति होती है और फिर भगवान उस रस को सारे ब्रज में बांटते हैं। इतना तीव्र क्षेत्र है वो। इसलिए आपको अगर भगवान की कृपा से वहाँ पर बरसाने का संग प्राप्त हो रहा है, धाम का अंग संग प्राप्त हो रहा है, तो आपको बहुत ऋणी रहना चाहिए, बहुत कृतज्ञ भाव में रहना चाहिए। ये एक बरसाने का पूरा लाभ लेने का एक सीक्रेट फार्मूला है। अगर आप हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि मुझ पर बड़ी कृपा है कि मुझे यहाँ पर आने दिया भगवान ने, राधा रानी ने आने दिया, न केवल आने दिया, सेवा दिया मुझे, अपने भक्तों की सेवा में लगाया। कि जो लोग आपके सामने अनपढ़ और इतने सुंदर नहीं दिखने वाले गंवार, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे ऐसा आपको लगेगा, वो राधा रानी के सर्वोच्च कृपा प्राप्त है, क्योंकि राधा रानी ने उनको अपने धाम में जन्म दिया है। राधा रानी के धाम में जन्म लेना और वहाँ निवास करना कोई साधारण खेल नहीं है, इसके लिए बड़ी तपस्या पुराने जन्मों में करनी पड़ती है। और जो इस परीक्षा में उतरता है, राधा रानी की कृपा प्राप्त होता है, वही वहाँ पर जन्म ले सकता है। तो राधा रानी उन सबको बड़ा एकदम सामान्य अवस्था में रखती है, क्योंकि हमें गर्व किस बात का होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, ये चार चीज़ का गर्व होता है, जब अपने को गर्व होता है कि मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में, वरिश्रेष्ठ कुल में हुआ है, और ऐश्वर्य में बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है लोगों के सामने। श्रुति यानी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत विद्या मेरी बड़ी है, डिग्री बहुत बड़ी है, और श्री बहुत धन है मेरे पास, बहुत धनवान हूँ मैं। इस चार चीज़ों से हमको मूल रूप से अभिमान होता है और गर्व होता है। तो राधा रानी अपने भक्तों से ऐसे उम्मीद नहीं करती कि वो ये चार चीज़ों से प्रभावित हो, इसलिए उनको धन से भी गरीब रखते हैं, विद्या से भी गरीब रखते हैं, सुंदरता से भी गरीब रखते हैं, हर तरह से सिंपल रखते हैं, ताकि गर्व होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। जब गर्व नहीं होता है तो आदमी राधा रानी और कृष्ण के चरणों में लीन रहता है। तो गर्व होने वाला आदमी होता है जो जन्म से श्रेष्ठ है, ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है, धन से श्रेष्ठ है और विद्या से श्रेष्ठ है, वो भगवान के शरण नहीं ले सकता। ये कुंती देवी ने भागवत में कहा है। तो इसलिए आपके सामने जब वो ब्रजवासी आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कितने महान हैं जिनको यहाँ राधा रानी ने जन्म दिया है। मैंने उनको रात को गहरी नींद में रजाई के अंदर कंटिन्यूस राधे 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 कीर्तन करते हुए सुना है, जब हम रात को राउंड लिया करते थे। इतना आश्चर्य हुआ है मुझे उस बात का, मुझे लगा कि आँखों का दर्द होता होगा, रोते होंगे, पुकारते होंगे, लेकिन जब कंबल निकाला, रजाई निकाला, तो गहरी नींद में मुँह से राधे 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 पुकार रहे हैं। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। हम नींद में क्या क्या देखते हैं पता है ना आपको? हाँ, जो नहीं देखना चाहिए वो दिन में देखते हैं, रात को दिन में देखने की इच्छा रखते हैं और देख नहीं पाते उसको रात को सपने में देखते हैं। ये हमारी चेतना है, कहाँ कहाँ हमारी चेतना भटकती है भोगों में, भोगों के लाभ में, दुनिया के आनंद लेने में भटकती रहती है हमारी चेतना। इनका तो हम लोग तो बोलते हैं कि हम लोग जब जप करने बैठते हैं ना तो हमको सबसे जगा रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, लेकिन जब करने में समय पे जब सबसे जागरूक रहना चाहिए तो हमको सबसे ज़्यादा नींद आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सीन है सवेरे के जप के समय पे, आधे लोग झपकी लेते रहते हैं, ये लोग जब सोए रहते हैं तो नींद में भगवान को पुकारते हैं। कितना विरोधाभास है ना उनमें हम में। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये मत समझना कि हम पढ़े लिखे हैं, शहर में हमारे पास सुविधा है, धन भी हम लेके आते हैं, और यहाँ पर बेचारे गरीब ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारा एक सामान्य विचार हो सकता है, अरे आपको दया आ सकती है बेचारे गरीब, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, वो तो मोतियाबिंद एक बहाना है, दांत सड़ गए तो एक बहाना है, लेकिन हमें सेवा देने के लिए भगवान ने वहाँ पर भेजा है, ये हमारी ज़रूरत है। ये भावना होनी चाहिए कि वी नीड टू सर्व देम। जब उनका आंखों का मोतियाबिंद हम निकालेंगे भौतिक रूप से, तो हमारा आध्यात्मिक मोतिया जो है मोतियाबिंद वो निकल जाएगा अज्ञान का, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। तो ये भावना मन से निकाल देना कि हम किसी गरीबों की सेवा करने जा रहे हैं, बेचारे गरीब, ये समझना ही हमारे लिए अपराध है। एक्चुअली उनकी सेवा करने का मौका मिलना, अवसर प्राप्त होना, ये हमारे लिए परम भाग्य की बात है, और वो हमारी ज़रूरत है कि हम उनको सेवा करना चाहते हैं और उनका सेवा करना हमारे कल्याण का कारण है। ये भाव रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब भाव कृतज्ञता के और इस प्रकार के भाव अगर बनाए रखना है तो आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेवा में जाएंगे ना, आपको जो काम दिया है उसमें आप अपना फोकस रखना और कहीं यहाँ वहाँ मत देखना। जैसे अर्जुन को बताया गया था, क्या दिखता है आपको? उसने कहा मेरे को पक्षी की बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही है। ये भी नहीं कहा कि पक्षी दिखाई पड़ रहा है, बाकी लोग बोल रहे बादल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे पंछी भी बैठे हुए हैं, सब बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन को बताया गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे पक्षी की बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही, बस जो काम दिया है उसी पर उसका लक्ष्य एकाग्र है। उस तरह से आप रहेंगे आप तो बहुत आनंद आएगा आपको। और अगर आपकी सेवा समाप्त होती है, आपका ड्यूटी खत्म हो गया है और आप फ्रेश हो गए और नींद भी पूरी हो गई है, तो सब लोगों को विनती है कि आप जहाँ कीर्तन चल रहा है वहाँ आके बैठिए और भगवान के नाम में अपना हाथ बटाइए, भगवान के कीर्तन में आप सहायता कीजिए, उसको दोहराइए बैठकर। उससे बड़ा लाभ नहीं है। श्री बरसाने क्षेत्र में जाकर अगर श्री जी के सामने पहाड़ के नीचे बैठकर अगर उनको पुकारने का मौका मिल रहा है, ये देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, वो आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये इससे बड़ी भाग्य की चीज़ क्या हो सकती है। इसलिए आपकी सेवा करने के पश्चात समय मिलेगा आपको, जाकर रोटी बेलिए किचन में, नहीं होता है तो कीर्तन में आके बैठिए, लेकिन टाइम पास बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ वहाँ की बेफिजूल बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है कुछ समय के लिए, वो अपने हाथ से ही आप गंवा रहे हो। इसलिए हर एक क्षण का, हर एक समय का, हर एक मिनट का, हर एक घंटे का इस्तेमाल कीजिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, क्योंकि धाम में सोना भी अश्वमेध यज्ञ का लाभ दिलाता है। समय पर सो जाइए और जल्दी उठिए और काम पे आ जाइए, वो भी एक सेवा है, टू कम ऑन टाइम। हमारे कैंप का रिकॉर्ड है, हमारे कैंप की ड्यूटी ठंड के मौसम में 5 बजे शुरू होती है, लेकिन हमारे 99% लोग जो है 5 बजे आकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, चाहे उनको गुनगुना पानी मिले, गर्म पानी मिले, ठंडा मिले, बहुत खोलता हुआ मिले, जैसे भी हो, वो 5 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर देते हैं। अब 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं मिनिमम सब लोग, और वहाँ पर ऐसी एनर्जी प्राप्त होती है, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि लोगों को पता चलता नहीं, करे बम्बई में तो 6 घंटे में थक जाता हूँ मैं, आखिरी 2 घंटे ऐसे गिनते रहता हूँ कब जाना है कब जाना है, और यहाँ पर 12-12 घंटे ऐसे काम करते रहते हैं जैसे कि कुछ किया ही नहीं, अगले दिन भी तैयार, और 10-15 दिन तक लगे रहते हैं, और आश्चर्य होता है कि इसे कैसे एनर्जी प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो धाम जो है ना वो दिव्य व्यक्ति है, वो आपको दिव्य शक्ति दिलाता है, आपसे काम करवा के लेता है, जिसको जिसकी चेतना सही जगह पर है, जितनी भावना सच्ची है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, उसके लिए आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है उससे। इसलिए वहाँ पर समय व्यर्थ कभी नहीं गंवाना, लगे रहना हमेशा, कुछ नहीं किसी सेवा में लगे रहना, भगवान के नाम की सेवा में लगे रहना। ऐसा नहीं कि केवल कीर्तन ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ आपको सेवा दी गई है वो एक दिव्य योजना का हिस्सा है। चाहे कोई गाड़ियों का ड्राइवर का कोऑर्डिनेशन कर रहा है, शायद डायरेक्टली मरीजों की सेवा भी नहीं कर रहा है, चाहे कोई रोटी ही बेल रहा है, चाहे कोई ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, रियल इंपॉर्टेंट सेवा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ आपका सेवा किया है वो मरीजों के आँखों का ऑपरेशन करने के लिए, दांतों की सेवा करने के लिए सारा इंतजाम किया गया है, तो कहीं भी आपको सेवा मिलेगा तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है उसके अंदर। हर सेवा जो है वो राधा रानी के चरणों में समर्पित है, और जिस दिन आप हृदय से वहाँ सेवा करोगे उसी दिन राधा रानी आपका नाम की सिफारिश कृष्ण को करेगी। ये भी आचार्य लोग कहते हैं कि बरसाना धाम में जो सेवा करते हैं उनकी सिफारिश उसी दिन राधा रानी कृष्ण को करती है, और जो राधा रानी की सिफारिश होती है उसको कृष्ण टाल नहीं सकते हैं, उन पर कृपा करना वो टाल नहीं सकते हैं। खुद आप प्रार्थना करेंगे शायद वो सुनेंगे भी नहीं, राधा रानी अगर उनके भक्तों की सेवा होने के बाद संतुष्ट होकर उनको आपका सिफारिश करेगी तो वो निश्चित रूप से उनको आपकी ओर देखना ही है और उनकी कृपा आप पर होनी ही है। ऐसा दिव्य धाम है वो, वहाँ पर जो सीक्रेट फार्मूला है वो पूर्णतः कार्यान्वित है। द सीक्रेट फार्मूला ऑफ गेटिंग द मर्सी ऑफ कृष्णा इज वेरी एक्टिव ओवर देयर, कि वहाँ पर जो राधा रानी है वो कृष्ण की स्वामिनी है और वो वहाँ राज्य करती है, उसका वहाँ पर राज्य है, और वो ही हमको कृपा करती है, आशीर्वाद देती है। हम कितने भी पतित हो, कितने भी हमारा मन भटका हो, लेकिन अगर वहाँ जाके सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हो तो राधा रानी हमारे सारे दोषों को और हमारे त्रुटियों को दुर्लक्ष करके वह हम पर कृपा करती है, और हम केवल वहाँ पुकारते हैं कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, हे राधे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, यही पुकारते रहते हैं हमेशा, और दिन रात भगवान का नाम मुख में लेकर वहाँ ब्रजवासियों को सेवा करते रहते हैं। वहाँ का कण कण जो आप पाएंगे वो अमृत है, वहाँ का एक एक बूंद जल की पिएंगे वो रस का सागर है, जो रस वहाँ पर प्राप्त है वह वहाँ के जल में और अन्न में, वहाँ की हवा में उपलब्ध है। वहाँ की हवा भी लेना अपने फेफड़ों में ये बड़ी भाग्य की बात है। वहाँ की मिट्टी का स्पर्श होना, जिसमें स्वयं सारी गोपियाँ चलती है, राधा रानी चलती है, कृष्ण भी उसके दलाइत है, उसका स्पर्श आपको होना, आपके शरीर पर, आपके बदन पर उसकी रज को प्राप्त होना, देवता लोग तड़पते हैं उसके लिए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है, वो आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आज से प्रार्थना शुरू कर देना कि भगवान टिकट तो निकाला है, सेवा भी दे दी गई है, आज अलॉटमेंट भी हो गया है, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है ना, कोई बीमार पड़ेगा, किसी का हड्डी टूटेगा, किसी का रिश्तेदार का कुछ बीमारी होगी, किसी के घर में इमरजेंसी आ सकती है, आपका टिकट कैंसिल हो सकता है, वहाँ जाने का कैंसिल भी हो सकता है। तो स्टार्ट प्रेइंग फ्रॉम टुडे, आज से ही प्रार्थना करना शुरू करना कि हमको जाना है वहाँ पर और एक एक क्षण क्षण वहाँ पर सेवा करना है। हाँ, तीन प्रकार के ब्रजवासी होते हैं, जो एक वहाँ जन्म लेते हैं, एक बाहर जन्म लेते हैं वहाँ जाके बस जाते हैं, और एक हमारे जैसे हैं जो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ब्रजवास हम लोग कर रहे हैं ना, वहाँ पर निवास कर रहे हैं ना, तो हम भी ब्रजवासी हैं कुछ समय के लिए। तो वो ब्रजवासी वहाँ का होना ये बहुत ऊँची चीज़ है। केवल वहाँ जाके किसी कमरे में रहना, स्नान करना, खाना पीना करना, ये इसका नाम ब्रजवास नहीं है। ब्रजवास यानी एक चेतना है, वो एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो आपको अपनाना है। और ब्रजवासी केवल वहाँ जन्म लेने वाले लोग नहीं हैं, उस समय आप लोग भी ब्रजवासी हो, इसलिए आपके साथ में जो आए हैं उनका भी आपको अपराध नहीं करना है, उनका तो करना ही नहीं है, लेकिन आपके साथ में जो काम कर रहे हैं वो भी उस समय के राजा रानी के कृपा पात्र हैं जब वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। तो अगर कुछ लोग पहुँच गए हैं, 300-400-500 लोग, तो भी उनकी कृपा प्राप्त है, उनका भी सम्मान करना, अपराध नहीं करना, उनकी भी सेवा करना आपका कर्तव्य है, इसी भावना में रहना। बड़ी श्रेष्ठ वस्तु से और श्रेष्ठ चेतना से आपका संपर्क होने वाला है, इसलिए आप उसके लिए मन की तैयारी रखना, दिल को तैयार रखना कि मैं MD डॉक्टर हूँ, MS डॉक्टर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इस भाव में बिल्कुल मत जाना। वहाँ के संतों से मैंने सुना है कि हमारे शहर में रहते हुए हमारे अंदर कई टोपियाँ पहनते हैं हम लोग। कोई बोलता है मैं अधिकारी हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई कहता है बहुत प्रभावी हूँ, मेरा पोजीशन बहुत पावरफुल है, कोई कहता है मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, कोई कहता है मेरे पर बहुत स्किल्स है, बहुत मैं कुशल हूँ, बहुत चीज़ों में मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं भाषण अच्छा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे टोपियाँ हम लोग पहनते रहते हैं। तो वहाँ के संत लोग कहते हैं सारी टोपियाँ उतार के आना बरसाने में, और कुछ भी हम नहीं है इस भाव में जाना वहाँ पर, आई एम नथिंग, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना धनवान हूँ, ना सुंदर हूँ, ना विद्या विभूषित हूँ, ना बड़ा अच्छा वक्ता हूँ, ना बड़ा अच्छा गाने वाला हूँ, ना बड़ा रोटी करने वाला हूँ, अच्छा ऑपरेशन करने वाला हूँ, बहुत कुशल डॉक्टर हूँ, ये सब जो टोपियाँ हैं ना, ये सब नकली टोपियाँ हैं और ये सब टेम्पररी टोपियाँ हैं, कुछ समय के लिए मिलती है वो कुछ समय के बाद छोड़ देती है, उम्र होने के बाद में ना हम अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, ना कुछ याद कर सकते हैं, ना कुछ सेवा कर सकते हैं, हमारे गला भी बैठ जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो राधा रानी के सामने जाना है तो सीना तान के मत जाना, नज़र झुका के जाना, और उसके आगे जाकर मन को नम्र करते जाना कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो भी है आपके वजह से हैं, तो गर्व करने की ज़रूरत क्या है, जो भी दिया हुआ आपका दिया हुआ है, जो सेवा भी आपकी दी हुई है, जो समय भी यहाँ पर मिल रहा है वो भी आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, प्रसाद भी आप दे रहे हैं, विश्राम करने का साधन भी आप दे रहे हैं, सेवा भी आप दे रहे हैं, सब आपका दिया हुआ है, तो गर्व किसके बात है। इसलिए कृतज्ञ भाव और कृतज्ञ भाव यही होना चाहिए, किसी भी चीज़ पर गर्व करते हुए वहाँ नहीं जाना चाहिए, तब जाकर आपको वहाँ पर पूरा लाभ मिलेगा, और ऐसा एक आकर्षण पैदा होगा आपके मन में कि मुझे बार बार जाना है वहाँ पर। जो सेवा में आनंद मुझे मिला वो दुनिया में आज तक किसी भी चीज़ में नहीं मिला, किसी भोग की वस्तु में नहीं मिला, कितना मैंने प्रयास किया भोगने का, लेकिन मुझे ऐसा आनंद किसी भी वस्तु में नहीं मिला। ऐसा अगर अनुभूति आपके मन में होती है तो आपकी यात्रा यशस्वी है, आपका वहाँ जाना सक्सेसफुल है। तो उस भावना के लिए तड़पना आप कि राधा रानी आपको एक बार नहीं अनंत बार बुलाएं और वहाँ पर सेवा दें और आपकी उनकी कृपा आप पर बनाए रखें। तो मेरी आपको ये विनती है कि मुझे हमेशा लगता है कि बरसाना जाना कोई खेल की बात नहीं है, जैसे भक्ति में अहंकार को जीतना कोई खेल नहीं है, उसी तरह से बरसाने में जाना कोई खेल नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है। इसलिए अपने मन को आप समझाइए और तैयार कीजिए, कुछ अलग अलग विकल्प आपके मन में होंगे तो अभी से ही उसको काट के फेंक दीजिए। हाँ, आनंद ज़रूर मिलेगा आपको, जिस आनंद आप समझो सोचते होंगे अरे जाने को मिल रहा है, बड़ा पिकनिक का आनंद आएगा, वो मिलेगा आपको, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कई चीज़ आपको मिलेगी अगर आप केवल उस चीज़ के लिए पकड़ कर नहीं जाओगे वहाँ पर। सेवा भाव से जाओगे तो आपको परिपूर्ण आनंद मिलेगा, आत्मा का मिलेगा, मन का मिलेगा, बुद्धि का मिलेगा, शरीर का भी मिलेगा, हर चीज़ का आनंद मिलेगा, हर स्तर पर मिलेगा, क्योंकि राधा रानी आपकी माता है, कृष्ण आपके पिता है, आपको परिपूर्ण संतोष और परिपूर्ण आध्यात्मिक संपूर्णता देने के लिए वो वहाँ पर तत्पर है, चाहते हैं वो, इसलिए आपको बुला रहे हैं, आओ मेरे धाम में आओ, मेरे आनंद को लूटो, आपके लिए बना के रखा हुआ है। और राधा रानी का जो कैंप है ये बहुत सालों से चल रहा है, और विशेष बात यह है कि आज इस साल 25वां साल है, 25th ईयर, क्योंकि सबसे पहला साल 92 था, 1992, इसमें कैंप शुरुआत हुई थी, बीच में बहुत गैप पड़ गया था, लेकिन अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो ये 25वां साल है, और 2002 में दोबारा शुरू किया गया था, तो वो अगर काउंट करेंगे तो 27 साल जब आएगा तो उसका 25 साल हो जाएगा। तो इतने सालों में कई सारे औजार हमने इकट्ठा किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनरी वहाँ पर इकट्ठा किए हैं, इनमें छोटे छोटे औजार भी होते हैं, बहुत हज़ारों के होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाखों की होती है, इतना सा टेलीस्कोप 7 लाखों का, 5 लाख का होता है, ऐसे कई कीमती वस्तु दांतों की और आँखों की वहाँ पर हमने इकट्ठा की है, वो सब राधा रानी की प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि मृदंग करताल माइक्रोफोन भी आपके पास है वो राधा रानी की प्रॉपर्टी है, जो भी आपका सेवा में वहाँ मिलेगा, टेबल कुर्सी मिलेगा और सारे साधन मिलेंगे, कंप्यूटर होगा, कुछ भी पेन पेपर पेंसिल जो भी आपने वहाँ पर मिलेगा आपको, वो कुछ लोग दानी लोग हैं वो देते हैं उसको, जो खुद नहीं आ पाते लेकिन आप जा रहे हैं आपका उत्साह देखकर वो जेब से देते हैं, और उससे राधा रानी का इतना प्रॉपर्टी हमने कई सालों से इकट्ठा करके उसको सेवा में लगाते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर उन सब की अच्छी देखभाल करना, हमारा सामान वहाँ पर कोई नुकसान ना हो या कोई चोरी न कर जाए या गायब न हो जाए या खराब न हो जाए, वो बिगड़े नहीं वहाँ पर, वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एवरीबडी इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ द कैंप इस दृष्टि से, क्योंकि आपके नज़र में आपके सामने जो भी सामान है वो राधा रानी का है, इस भाव से आपको उसका इस्तेमाल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको दुरुपयोग नहीं करना है, और वो खोना भी नहीं है आपको। और जहाँ जहाँ आपकी सेवा समाप्त होगी, समझो आपको ओपीडी खत्म हो गई, तो ओपीडी का सारा वाइंड अप करके ही आपको वहाँ से निकलना है, तुरंत भाग नहीं जाना है, अरे इधर यात्रा शुरू हो रही है भागो अभी यहाँ से, नहीं, यात्रा का आनंद भी आपको तब मिलेगा जब आपका काम आप जिम्मेदारी से पूर्ण करोगे, उसकी चाबियाँ सुपुर्द करोगे, फ्री हो जाओगे, फिर आपको यात्रा देने के लिए राधा रानी भी तत्पर है, बहुत यात्रा का आनंद भी देने के लिए तैयार है। और सब संत लोग बताते हैं, हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि इस धाम की यात्रा का जो आनंद है वो सबको प्राप्त होता है यात्रा करेंगे तो, क्योंकि हम सब धाम में जाके सेवा हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन बरसाना धाम में बरसाना यात्रा करने की जो योजना है वो तब आपको पूरी तरह आनंद देगी जब आपने पहले जाकर धाम वासियों को सेवा किया है। जब पहले आप जाकर धाम वासियों की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं और सारा सामान वगैरह जिम्मेदारी से सौंप देते हैं अच्छी तरह से, और सारे जो बताया गया पूरा काम करके ओके करके ग्रीन सिग्नल लेके आते हैं, तो भगवान हर एक क्षेत्र से आपके लिए इतनी गौरव लीला प्रकट करेंगे आपके लिए, क्योंकि उनके हाथ में आपको कितना देना है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से काम करेगा उसके लिए धाम की यात्रा परिपूर्ण होगी। इट इज द बेस्ट वे टू गो टू धाम आफ्टर डूइंग सर्विस टू धाम एंड धाम वासीज, तब वो धाम हर एक स्थली जो है, हर एक स्थल जो है अपना अपना गौरव लीला आपके लिए प्रकट करेगा, किसी के माध्यम से, कथा करने वाले के माध्यम से या और अनुभव के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से आपको अपना गौरव प्रकट करेगा, ऐसा अनुभव आपको दिलाएगा कि जिंदगी भर राधा रानी से आप अटैच हो जाओगे, और हमको उन पे आसक्त होना है, उनके चरणों की भक्ति से हमको जुड़ जाना है, वही तो वहाँ की प्राप्ति है, वहाँ जाएंगे तो उनके होकर लौटना है, ऐसे ही लौटना नहीं सुखे सुखे, उनके होकर लौटना है, उनकी कृपा की याचना करते हुए आप वापस आना है। तो इसलिए अपनी चेतना को तैयार कीजिए, समय की पाबंदी रखिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान कीजिए। हाँ, कई जवान लड़के लड़कियां जा रही हैं वहाँ पर, जैसे धाम एक दिव्य चीज़ है, हाँ मैं आपका वर्णन करते जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आज का कलयुग का परिणाम भी आपको वहाँ पर दिखेगा, वहाँ पर जेब कतरे भी मिलेंगे, पिक पॉकेट भी मिलेंगे, डकैत भी वहाँ पर है, सब कुछ होता है, लूटमार भी होती है, बसों को लूटते हैं, सब कुछ होता है। और आप लोग मुंबई के लोग हो, उनको मालूम है, उनके बड़े बड़े मोबाइल होते हैं बहुत महंगे महंगे, सब लोग लेके आएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, वहाँ पर लोगों का ध्यान रहता है, पैसे भी लेकर आएंगे, वैसे भी नोट की गुंजाइश कम है आजकल, तो आपके जेब में पैसे भी होंगे, सब जानते हैं वो, तो कहीं भी अपने आप को अकेला यहाँ वहाँ भटकना नहीं आप, सब जगह सुरक्षित रहना, रात के समय भी जाना होगा तो एक साथ जाना, ऐसा मुंबई का जैसा माहौल में घूमना नहीं वहाँ पर। यहाँ पर 2 बजे भी एक लड़की ट्रेन से उतर सकती है आराम से, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, 7 बजे के बाद में अंधेरा हो जाता है, और कहीं भी अकेले जाना आना असुरक्षित है वहाँ पर। इसलिए ऐसा अनुभव लेके मत आना, अरे वो बरसाना कैंप में गए थे, अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मेरी भांजी एक बार मेरी यात्रा में आई थी, मैंने बहुत उनको मना कर लेके आया था, तो दुर्भाग्य से रंगीली महल में उसका मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद में यात्रा में नहीं आई, वो इतना परेशान हो गई मोबाइल गुम होने से। तो ऐसा मतलब उसको बुरा लगा, बुरा अनुभव आया, उसको लगा कि इतना बुरा अनुभव आया मुझे, कोई चोरी नहीं किया, कहीं ऐसा मिसप्लेस हो गया वो। तो उसके बाद में वापस नहीं आई वो, अब ये भाग्य की दुर्भाग्य बताओ, वेरी ग्रेट बैड लक, क्या करेंगे उसके लिए। तो हमारी ये ऐसी इच्छा नहीं है कि आप लोगों को ऐसा कोई बुरा अनुभव आ जाए, किसी ने छेड़खानी किया आपका, किसी ने आपका पॉकेट मारा, या किसी बंदर ने आपको खरोचा है ना, आपने बहुत गुस्सा लगा के मजा करेंगे, ऐसा कुछ फेंकेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बंदर झपक के आपका काट लिया आपको, हाँ बैग छीन लिया, वो तो बैग छीन के पैसा निकाल के फाड़ देते हैं उसको, उनको भी लगता है अच्छा है कुछ फाड़ने के लिए, हाँ तो बहुत रोएंगे आप उस समय, और कुछ नहीं कर सकते, आपको देखते रहना पड़ेगा, वाह अच्छी तरह से मेरा बैग फाड़ रहा है। तो सुरक्षा नंबर वन, रात को यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, जब समय आएगा तब सबके साथ जाना दर्शन करने के लिए, आपको सब समझाया जाएगा क्या क्या अपनी अपनी खबरदारी लेनी है, क्या क्या देखभाल करने है अपने आप की, सुरक्षित रूप से यात्रा कैसे करनी है, कहाँ पर क्या क्या आतंक होगा सब बताया जाएगा आपको, कहाँ पर लोग आपको परेशान करेंगे, कहाँ पर बंदर परेशान करेंगे, कहाँ पर असुरक्षित होगा सब बताया जाएगा आपको, वेदर किस समय पर कष्ट देगा आपको, वो सब आपको जानकारी दी गई है। और मुझे इस बार आपको बताना ज़रूरी है कि इस बार का न्यूज़ ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है सब जगह पर, ब्रज में भी बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, और उसके बावजूद भी दिसंबर में इतना ठंड नहीं पड़ा, तो वातावरण का अनुमान ये है कि ठंड जो है वो 20 फरवरी तक एक्सटेंड होने वाली है, और मैं भी जनवरी में गया था तो केवल 0.5 टेम्परेचर था, ज़्यादा नहीं था 0.5 वाली। उसके बाद में 1 हुआ, तो उसके बाद में 3 हुआ, जब मैं निकला तो 7 था मिनिमम, लेकिन अभी मिनिमम जो है ज़्यादा मिनिमम नहीं बढ़ा नहीं है, 9 तक रहेगा, और दिन में 18 तक टेम्परेचर बढ़ेगा, 18 से 19 तक। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर जो सर्दी में था मिनिमम, वो 17-18 हो गया था, वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 17-18 रहेगा, और मिनिमम रात को जो है 9, 8, 10, 9 ऐसा रहेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा अच्छी तरह करना, गर्म कपड़े लेके जाना, बड़े उत्साह से नंगे पैर यहाँ वहाँ घूमना नहीं, तुरंत आपको बीमार हो जाएंगे आप, और खाने पीने में भी अपनी सुरक्षा करना, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा लेकिन जितना आपको हो सके उतना खाना, ताकि आपको नींद अच्छी आए, काम भी अच्छा चलेगा। किसी किसी का पेट बिगड़ता है तो 3-3 दिन एडमिट रहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर गए सेवा करने के लिए और वहाँ पर आईवी लेते रहे तो वहाँ पर भी आपकी जगह पर कोई काम करने को मिलता नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट रूम लेके जाते नहीं हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ें कैंप में होते हुए नज़र आया है। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में हमारे कितने लोग एडमिट रहते हैं, कुछ खाया कुछ पिया, कुछ इधर उधर कुछ खाया, बाहर कुछ खाया, मूड में आ गए तो तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए तबीयत का ख्याल रखना, अच्छे आपके कपड़े आपके लिए जितने ज़रूरी है उतने लेके जाना, क्योंकि शरीर और मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहेगा तो यात्रा का पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो आप रोते रहेंगे वहाँ पर जाके, पछताते रहेंगे और बोर होते रहेंगे, ऐसे बोर होकर वापस आ जाएंगे। इसलिए तीनों तरफ से अच्छे मूड में रहना, शरीर से मन से और आत्मा से, तो धाम आपको पूरी तरह से कृपा करेगा आपके ऊपर। और बताना है कुछ बताइए, सब कुछ कवर किया मैंने। हाँ हमारे कैंप की जो डेट्स हैं वो 5 तारीख को यज्ञ होगा। यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि हम कोई कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, यज्ञ इसलिए करते हैं कि हम सभी आचार्यों को आह्वान करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से, और उनकी कृपा याचना करते हैं कि महाराज संत लोगों को बुलाते हैं, आचार्यों को उनके नाम से आहुति अर्पण करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमें बरसाना धाम में, राधा रानी के धाम में उनके प्रिय ब्रजवासियों को सेवा करने के लिए अच्छी चेतना, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी भावना देना, ताकि हम उनको पूरी तरह संतुष्ट कर सकें। संत लोग कहते हैं कि जब ब्रजवासी लोग आपकी सेवा से संतुष्ट होकर आपके ओर देखकर हंसते हैं, मतलब स्मित हास्य करते हैं, प्रेम से संतुष्टि की मुस्कान आपको दिखा देते हैं, तो साक्षात राधा और कृष्ण आपकी ओर संतुष्ट होकर स्मित हास्य कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है, ये उसका अर्थ है। इफ दे स्माइल एट यू विद सेटिस्फैक्शन देन राधा कृष्ण आर स्माइलिंग एट यू विथ सेटिस्फैक्शन. ऐसा धाम है वो. और वहाँ पर जाकर हम लोग अपना सब जो आत्मा के ऊपर जो विकार है ना हमारे, द्वेष है हमारे अंदर, क्रोध है हमारे अंदर, लोभ है हमारे अंदर, घृणा है किसी के प्रति, और बहुत चीज़ों की हम लोग याचना करते हैं और हम लोग कामना करते हैं, बहुत तड़पते हैं कुछ चीज़ों के लिए, काम वासना से तड़पते हैं, वो सारे दुष्ट चीज़ें जो हैं उसका वहाँ पर नाश होता है. उससे हम जैसे कि बाथरूम में जाते हैं हम लोग तो गंदगी को धोकर बाहर स्वच्छ होकर निकलते हैं, उससे बरसाना में जाएंगे सेवा करेंगे, बाद में यात्रा करके लौट के आएंगे तो जितनी भी हमारे अंदर गंदगियाँ हैं, आंतरिक गंदगियाँ, वो स्वच्छ होते हुए आपको नजर आएगी, आप उससे मुक्त होकर नजर आएंगे. बरसाना धाम की देन है आपके लिए. वो जो विकार लेकर मुंबई में हम जीते हैं, अपने शहर में जीते हैं, वो विकार वहाँ पर नष्ट होते हुए नजर आते हैं, ये धाम की कृपा है. तो वो सारी चीज़ों को समझकर आप जाना. हाँ, वहाँ के प्रति ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्या उसका परिणाम अपेक्षित क्या है, हमको पता होना चाहिए, तब जाकर हम जाकर वहाँ से ले सकते हैं. हाँ, 1000 लीटर दूध का भंडार है और आप 1 चम्मच लेके गए तो कितना मिलेगा आपको? 1 चम्मच दूध मिलेगा. 2-3 बार पियेंगे तो कितना पियेंगे? तो लेकिन अगर आपको पता है कि 1000 लीटर के दूध के भंडार में जा रहा हूँ मैं, तो शायद कम से कम 50 लीटर का बर्तन लेके जाएंगे तो भर के लेके आएंगे तो कुछ दिन चलेगा आपका. उसी तरह से मैं एक लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. वो तो अथाह भंडार है वहाँ पर कृपा का. जो लुटने के लिए कृष्ण भी आते हैं स्वयं, इतना अथाह भंडार है वो. तो आपकी आत्मा को विस्तार कीजिए, आप शरीर को रोक दीजिए, आत्मा का विस्तार कीजिए और वहाँ की कृपा को लेकर आइए. इस कैंप को आयोजित करने के लिए काफ़ी मेहनत लोग करते हैं. हाँ, कितने महीनों से गोकुलाष्टमी तब ठीक काम शुरू होता है, फॉर्म रिलीज होता है, राधाष्टमी के आसपास फॉर्म वापस लेते हैं, कई सैकड़ों फॉर्म आते हैं, उसको फिर छाटना पड़ता है कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है. बहुतों लोगों को ना बोलना पड़ता है, कुछ लोगों को फिर हाँ बोलते हैं. फिर वो सेवा का आयोजन करते हैं, कौन किसने किसने हाँ बोला है, उसको कहाँ लगाना है, कौन पुराने लोग हैं कौन नए लोग हैं, कहाँ कहाँ उनको एग्जाम सर्विस देना है. बहुत बड़ा काम है. पहले हम लोग 220-180 लोगों को लेके जाते थे, अभी 500 लोगों को लेके जा रहे हैं. तो सब लोगों को सेवा में लगाना, उनको व्यवस्था करना, खाने पीने के रहने की, स्वास्थ्य की सब व्यवस्था करना कोई बड़ी छोटी काम नहीं है. लेकिन बहुत उत्साह से हमारे डॉक्टर चौधरी, संतोष सच्ची प्राण प्रभु और बहुत सारे हमारे आयोजक हैं, बहुत मेहनत करते हैं पीछे से आपकी सुख सुविधा, आपके रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. और उसके उनके पीछे और एक कुछ लोग हैं, जैसे हमारे प्रेम बंधु प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक हमारे प्रमुख है उनके, हाँ, वेंकट रमणन, व्रत सुंदर प्रभु, उनकी एक टीम है. शायद आपको कैंप में नहीं दिखेगी लेकिन इस कैंप में जितना धन लगेगा उस धन की व्यवस्था वो करते हैं. और ये कैंप एक चमत्कार है क्योंकि अक्सर मैंने जितने साल इस कैंप में काम दिया है, और एक समय पर मैं पूरी व्यवस्था खुद देखता था, अभी हमारे प्रभु जी सब व्यवस्था देखते हैं. तो मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि मैं ट्रेन में चढ़ते तक कैंप के फंड हमारे पास नहीं हुआ करते थे. अरे, सारे टिकट भी बुक हो गए, सब लोग भी जाने लगे, वहाँ बुकिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, कैंप अनाउंस भी कर दिया, ओपीडी का बैनर लग गया, सब लग गया, लेकिन मैं भी खुद ट्रेन में चढ़ रहा हूँ फिर भी फंड साथ में नहीं है. लेकिन जैसे कैंप शुरू होता है एकदम आश्चर्यकारक तरीके से फंड्स आ जाते हैं और कैंप के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है. आज भी वही स्थिति है. आज जो तारीख क्या है, क्या तारीख है? 29 जनवरी तारीख है. कहते हैं कि केवल 1 लाख रुपया कैंप के लिए इकट्ठा हुआ है आज की तारीख में. ऑलरेडी ये लोग 5-5 लोगों को ले जाने की व्यवस्था कर चुके हैं, पूरा भंडार खोल चुके हैं, सारी व्यवस्था कर चुके हैं. हाँ, 35-40 लाख रुपीज़ का इंतजाम वहाँ पर ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं, सब योजना हो चुकी है. इसलिए अगर आपके मन में, दृष्टि में, कोई याद में कोई रहेगा डोनर जो डोनेशन कर सकता है, उनको आप बताइए कि अच्छा काम है ये. कुछ दोस्त हैं, स्कूल के हैं, फ्रेंड है, कॉलेज के, कॉलोनी के हैं, उनको बताइए. और जितना भी हो सके अपना हाथ बटाइए. हाँ, आपको जितना हो सके आप बटाइए, दूसरे लोगों को बताइए और अपनी तरफ से बटाइए. अरे, एक आंख भी कोई दे सकता है दान में, समझो किसी की सेवा करने में, कितनी बड़ी बात है. एक ब्रिजवासी जो अंधा है वो कल दिखेगा उसको, और क्या करेगा वो? क्या वो टीवी देखेगा कि वो सीरियल देखेगा, टीवी की पिक्चर देखने जाएगा उसको देख के? ब्रिजवासी की आँख आप ठीक करेंगे तो वो राधा रानी के दर्शन करने भागेगा तुरंत तुरंत, पोथी खोल के जो पोथी नहीं पढ़ पाया उसको पढ़ने लगेगा, सत्संग करेगा तुरंत. जो थाली में कुछ दिखा नहीं पड़ रहा है वो दिखने लगेगा उसको कि थाली में क्या परोसा है. अकेला अकेला बाथरूम में जा नहीं पाता है तो अभी बाथरूम में अकेले जा पाएगा, तो पोते को बुलाएगा, बीवी को बुलाएगा, दादी को बुलाएगा, वो किसको किसको बुलाएगा, असहाय रहेगा आदमी। वो अचानक नेक्स्ट डे तुरंत अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा, भले 10 साल के लिए हो, बूढ़ा व्यक्ति है वो। लेकिन एक आंख भी अगर अपने जेब से पैसा निकल कर उसकी आंख अगर बन सकती है तो हमारा भाग्य है वो, हमारा नुकसान नहीं है। तो जितना भी आपकी क्षमता हो आप करिए, कोई बात नहीं। आप नहीं भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उसको बताइए। 1500 रुपये में एक आंख हमारे कैंप में कॉस्ट टू कॉस्ट बन सकती है। आप लोगों का खर्चा है वो डिफरेंट है, एक आंख के बनाने के लिए 1500 रुपीज कॉस्ट है। और एक व्यक्ति को हम वहाँ पर एक कंबल देते हैं, एक मोजा की जोड़ी देते हैं, और 40 दिन की दवा देते हैं, चश्मा देते हैं, 2 बार उनका जाकर बाद में फॉलोअप होता है। हम लोग तो लौट के आते हैं, हमारी वहाँ की टीम जो है वो 2 बार वहाँ पर उनको फॉलोअप देते हैं, पूरी A to Z बॉम्बे जैसी जानकारी और सेवा वहाँ पर उनको देते हैं, परफेक्ट सर्विस। अगर आप बॉम्बे हमारे भक्ति विद्यालय में आएंगे मोतियाबिंद को ऑपरेशन करने के लिए, क्या आपको सेवा मिलेगी, क्या दर्जे की मिलेगी, वही दर्जा की सेवा आपको वहाँ पर दी जाती है मरीजों को। ये हमारा प्रण है वहाँ का कि हम लोग किसी भी तरह से गांव हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए सेवा का क्वालिटी में हम लोग फर्क नहीं करेंगे। लोग हमको बोलते हैं अरे क्या बाहर के कैंप में 600 रुपये होता है, आप लोग 1500 रुपये मांगते हो, तो हम बताते हैं आपको देना है तो दो, हम लोग ऐसे ही करेंगे, हमारा यही स्टैंडर्ड है। एक बार मेरा इंग्लैंड के एक धनी व्यक्ति से ऐसा ही बातचीत हो रही थी, वो कह रहा था क्या आप लोग तो कैंप के नाम से 1500-1500 रुपये लेते हैं लोगों से, मैंने 600 रुपये में कितने ऑपरेशन करवाए हैं, 1000 ऑपरेशन में दान दिया है। तो मैंने बैठ के पूरा समझाया उनको, उसके एंड में उनको बोला कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, आपको देना है तो दो तो मत दो। तुरंत 5 लाख रुपए का चेक निकाल के दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं उस पर हम पर विश्वास होना चाहिए, हम लोग डर के मारे नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और देने वाले के लिए राधा रानी तो सबको देने वाली है, हम बता रहे हैं आप दीजिए आपकी इच्छा है तो, लेकिन नहीं देना चाहिए तो मत दीजिए, हमारे आपके लिए प्रार्थना है। राधा रानी अपना काम सब पूरा कर लेती है, क्योंकि राधा रानी का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो सेवक है उनके, हमारी सेवा हो रही है उसमें। और आपने यहाँ पर 2000 रुपये लिखा है, मैंने मिस्टर वेंकट से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ कॉस्ट बढ़ गया अभी। हाँ ओके सॉरी। हाँ एनीवेज 1500 या 2000 हो, जिसको दो देना है वो दे दो। और एक और सुंदर बात है कि मार्च 31 तक हमारे संस्था के लिए 100% टैक्स एग्जेम्पशन उपलब्ध है, उसके बाद में उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा रिन्यू करने के लिए। तो अगर आप 5000 के ऊपर डोनेशन देंगे तो उसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, ये ऐसी जानकारी भी अभी है हमारे ट्रस्ट की। एनीवे वो सब तो टेक्निकल बातें हैं, हम आपको हृदय से विनती करते हैं कि आप अपने हृदय से इस कैंप में सेवा करो, किसी को दुख मत दो, खुद भी खुश रहो, ब्रजवासियों को सुख दो, राधा रानी और कृष्ण को भी सुख दो, उसके द्वारा आचार्यों को भी सुख दो, क्योंकि वो जब आप ब्रजवासियों को सुख देते हो, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हो, सब आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। और धूमधाम से उसमें कथा में आनंद लो, क्योंकि रोज जब आप कथा सुनेंगे तो आपकी रोज की चेतना बनी रहेगी हमेशा, एवरीडे उत्साह से आइए, हाथ पांव मुंह धोजिए फ्रेश होकर कथा में आकर बैठिए। सुबह 7 से 7:30 बजे तक भगवद गीता के ऊपर आधा घंटा प्रवचन होगा, और शाम को 6:30 से 7:30 तक रूटीन कथा होगी धाम के बारे में, और 7:30 को शाम को प्रसाद होगा। और कोई अनाउंसमेंट है? और उसके बाद में आपके लिए उन्होंने यात्रा निश्चित किया है, वो अनाउंसमेंट करते रहेंगे उसका, कौन से ग्रुप के लिए कब यात्रा है, तब दिल से पूरी तरह से सेवा करके अपना जिम्मेदारी सुपुर्द करके यात्रा में आइए, उसका लाभ लीजिए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे तरफ से आपको फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी दे सकते हैं, तो उस विषय उस उपलक्ष्य में हम 1-1.5 दिन की यात्रा भी आपके लिए कराते हैं, उसका भी आप लाभ लीजिए। और संतुष्ट मन से राधा रानी को हृदय में स्थापित करके अपने अपने घर लौट के आइए। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।